मैं चंदन कुमार सामाजिक विज्ञान संकाय के बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ और आपके बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, जिसके सिलेबस के अंतर्गत सेकेंड यूनिट है भारतीय समाज का स्वरूप। भारतीय समाज के स्वरूप के परंपरागत आधारों के अंतर्गत चौथा अध्याय है धर्म, जो निम्न प्रकार है। भूमिका: भारतीय समाज सदा से ही धर्मपरायण समाज है और संसार में अपनी इसी विशेषता के कारण उसका आदर है। धर्म की यह परंपरा भारतीय समाज की अति प्राचीन परंपरा है और पूर्व वैदिक काल से इसकी निरंतरता अविच्छिन्न रूप से बनी हुई है। धर्म ही भारतीय सामाजिक जीवन का सर्वोच्च आदर्श माना गया है। यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य के सभी क्रियाकलापों का अंतिम लक्ष्य धर्म संचय करना है। भारतीय समाज व्यवस्था का विकास पाश्चात्य समाज के विकास की भांति अर्थ या भौतिक वस्तुओं को आधार मानकर नहीं हुआ है। जिस प्रकार पाश्चात्य समाज अर्थ व भौतिक सुख प्राप्ति कर पर अविलंबित है, अपने प्रत्येक कार्य में भौतिक सुख को प्रमुखता देता है, उसी प्रकार भारतीय समाज धर्म पर अविलंबित है। जीवन के प्रत्येक छोटे बड़े कार्य या धर्म के आधार पर व्यवस्थित होते हैं। जो समाज का व्यक्ति धारण करे वह धर्म है, यह धर्म की पहली परिभाषा है। जैसे अग्नि का धर्म उष्णत्व है, उष्णत्व न तो अग्नि की सत्ता ही उष्णत्व के बिना न तो अग्नि की ही सत्ता रह जाएगी, ऐसे ही धर्म न हो तो हिंदू समाज का अस्तित्वहीन अर्थहीन हो जाएगा। धर्म पर ही इसकी संस्कृति अविलंबित है। इस विषय में और कुछ विवेचना करने से पूर्व धर्म के अर्थ व प्रकृति को समझ लेना आवश्यक होगा। धर्म का अर्थ व प्रकृति: धर्म किसी न किसी प्रकार की अति मानवीय या अलौकिक या समाजोपरी शक्ति पर विश्वास है, जिसका आधार भय, श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता की धारणा है और जिसकी अभिव्यक्ति प्रार्थना, पूजा या आराधना है। धर्म की उपरोक्त परिभाषा आदिम और आधुनिक दोनों प्रकार के समाजों में पाए जाने वाले धर्मों की एक सामान्य व्याख्या है। प्रत्येक धर्म का आधार किसी व्यक्ति का विश्वास है और यह शक्ति मानव शक्ति से अवश्य ही श्रेष्ठ है, परंतु केवल विश्वास संपूर्ण धर्म नहीं है। इस विश्वास का एक भावात्मक आधार होता है, जैसे उस शक्ति के संबंध में भय या उसके दंड का भय, साथ ही शक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति या प्रेम भी धर्म का आवश्यक अंग है। उस शक्ति से लाभ उठाने के लिए और उसके कुप से बचने के लिए प्रार्थना, पूजा या आराधना करने की विधियां या संस्कार भी हुआ करते हैं। इन धार्मिक क्रियाओं में अलग अलग समाजों में अलग अलग तरह की धार्मिक सामग्रियों, धार्मिक प्रतीकों और जादू टोनों, पौराणिक कथाओं आदि का समावेश होता है। उस शक्ति का जिस पर विश्वास किया जाता है, रूप और स्वरूप भी प्रत्येक समाज में अलग अलग होता है। कहीं तो निराकार शक्ति की आराधना की जाती है और कहीं उस शक्ति के साकार रूप को पूजा जाता है। संक्षेप में इस शक्ति से संबंधित समस्त विश्वासों, भावनाओं और क्रियाओं को ही धर्म कहते हैं। आधुनिक मानव शास्त्र के प्रवर्तक श्री एडवर्ड टायलर ने ही शायद सर्वप्रथम सबसे कम शब्दों में धर्म की विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की थी। उनके अनुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। सर जेम्स फ्रेजर के मतानुसार धर्म की प्रकृति और भी निश्चित है। आपने लिखा है कि धर्म से मैं मनुष्य के श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ, जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को धर्म दिखलाती और नियंत्रित करती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सर्वश्री गिलिन और गिलिन की परिभाषा उल्लेखनीय है। आपके शब्दों में एक सामाजिक समूह में फैले हुए उन भावात्मक विश्वासों को, जो कि किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है, तथा उन बाहरी व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं और प्रतीकों को जो इन विश्वासों से संबंध रखते हैं, धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित समझा जा सकता है। हेडिंग: भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ अंग्रेजी शब्द रिलीजन के अर्थ से भिन्न है। शाब्दिक दृष्टिकोण से धर्म घी धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ जो किसी वस्तु को धारण करे या उस वस्तु का अस्तित्व बनाए रखे। इस दृष्टिकोण से धर्म किसी भी वस्तु का वह मूल तत्व है जिसके आधार पर उस वस्तु की यथार्थता को समझा जा सकता है और जिसके आधार पर उस वस्तु का अस्तित्व संभव होता है। महाभारत में अस्पष्टता उल्लेख है कि धर्म धारण मध्य मृत्यु धुर्मह धारणेति प्रजा, अर्थात धारण करने वाले को धर्म कहते हैं। धर्म प्रजा को धारण करता है। इसी आधार पर डॉक्टर शर्मा ने लिखा है कि धर्म का सिद्धांत सभी प्राणियों की रक्षा सिद्धांत है। चूंकि यह सिद्धांत सब प्राणियों की धारणा या रक्षा करता है, इसलिए इसे धर्म कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में कहा गया है कि यतो अभ्युदयनीय श्रेयस सिद्धि सह धर्म, अर्थात जिसे इस लोक में अभ्युदय लौकिक उन्नति और परलोक में परम कल्याण की प्राप्ति हो वह धर्म है। मीमांसकों के अनुसार चोदना लक्ष्मणार्थो धर्म, अर्थात भगवत आज्ञा धर्म का लक्षण है, अथवा शास्त्र से अनुशासित या स्वीकृत कर्म या आचरण पद्धति ही धर्म है। मनुस्मृति में तो धर्म की परिभाषा के स्थान पर धर्म के चार स्रोतों का उल्लेख किया गया है, श्रुति, वेद, स्मृति, सदाचार और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने धर्म की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह धृ धातु से बना है। धृ का मतलब होता है बनाए रखना, धारण करना या पुष्ट करना। यही वह मानदंड है जो विश्व को धारण करता है। किसी भी व्यक्ति का वह मूल तत्व है जिसके कारण वह वस्तु है। वेदों में इस शब्द का प्रयोग धार्मिक विधियों के अर्थ में किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में धर्म की तीन शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से है। जब तैत्तरीय उपनिषद हमसे धर्म का आचरण करने को कहता है, तब हम उसका अभिप्राय जीवन के उस सोपान के कर्तव्यों से पालन होता है जिसमें हम विद्यमान हैं। इस अर्थ में धर्म शब्द का अर्थ प्रयोग भागवत गीता और मनुस्मृति दोनों में हुआ है। वैशेषिक सूत्रों में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि जिससे आनंद और परमानंद की प्राप्ति हो वह धर्म है। अपने प्रयोजन के लिए धर्म की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यह चारों वर्णों और चारों आश्रमों के सदस्यों द्वारा जीवन के चारों प्रयोजनों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में पालन करने में योग्य मनुष्य का समूचा कर्तव्य है। हेडिंग, धर्म के लक्षण। उपरोक्त विवेचन से ही धर्म के लक्षणों का कुछ स्पष्टीकरण हो जाता है, पर उसे और भी स्पष्ट रूप से इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। मनु महाराज ने कहा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, अर्थात समस्त वेद अर्थात ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद धर्म का मूल है। श्रीमद् भागवत गीता में भी स्पष्ट कहा गया है, वेद प्रणहितो धर्मो ह्य धर्मस्त दिपर्ययः, अर्थात वेद में कहा हुआ धर्म है और उससे विपरीत अधर्म है। इस प्रकार धर्म का प्रथम आधारभूत लक्षण यह है कि शास्त्र प्रेरित या वेद द्वारा निर्धारित कर्म ही धर्म है। दूसरा, धर्म का दूसरा लक्षण है क्रिया साध्यत्वे सति श्रेयस्करित्वमित लौकिकाः, अर्थात क्रिया या कर्म द्वारा सिद्ध होकर कल्याणकारी होना धर्म का लक्षण है। यह लौकिक पुरुषों का मत है। तीसरा, धर्म का तीसरा लक्षण ऐसा किया गया है, सत्या जज्ञाते दयना दानीन च वर्धते क्षमाया तिष्ठति क्रोधान्नश्यति, अर्थात धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया व दान से वह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है और क्रोध से उसका नाश होता है। चौथा, धर्म का चौथा लक्षण उपनिषद के अनुसार यह है कि धर्म समस्त विश्व का आधार या नींव है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति के आचरण की वे समस्त बुराइयां दूर हो जाती हैं जो कि विश्व कल्याण के विपरीत है। कौटिल्य के अनुसार पांचवा, कौटिल्य के अनुसार धर्म वह शाश्वत सत्य है जो कि सारे संसार पर शासन करता है। यह धर्म का पांचवा लक्षण है। छठा, धर्म का छठा लक्षण यह है कि जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा दे वह धर्म नहीं बल्कि कुधर्म है। जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी हो है वही यथार्थ धर्म है। जो धर्म के बिल्कुल विपरीत है वह अधर्म कहलाता है। सातवां, धर्म का सातवां लक्षण यह है कि स्वधर्म ही श्रेय है और पराय धर्म का त्याग ही कल्याणकारी है। गीता में श्री कृष्ण का निर्देश है कि पराय धर्म का आचरण कितना ही सुखकर क्यों न हो तो भी उसकी अपेक्षा स्वधर्म ही अधिक श्रेयस्कर है। चाहे वह स्वधर्म विगुण अर्थात सदोष भले ही हो, स्वधर्म के पालन में ही यदि मृत्यु हो जाए तो श्रेयस्कर है, परंतु दूसरों का धर्म भयावह या भयंकर होता है। धर्म का अंतिम लक्षण यह है, एक एव सुहृद धर्मो निधने अत्यनुयायत यह शरीरेण समम नासम सर्वमन्यत गच्छते। अर्थात एक धर्म ऐसा है, मित्र है, जो मरने पर भी जीव का साथ जाता है और सब तो शरीर का साथ छोड़कर चले जाते हैं। हेडिंग, धर्म के स्रोत। जहां तक धर्म के स्रोत का प्रश्न है, महाभारत के अनुसार सत्यता, हितकर प्रथाएं तथा आचरण धर्म के मुख्य स्रोत हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के चार स्रोत इस प्रकार हैं: क वेद, ख स्मृति या धर्मशास्त्र, ग धर्मात्मा लोगों का आचरण और घ व्यक्ति का अपना अंतःकरण। इन स्रोतों का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। क वेद हिंदू धर्म के मूल एवं आधार ग्रंथ हैं। वेद शब्द का वास्तविक अर्थ ज्ञान है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन वेदों में जो मंत्र हैं वे हमारे ऋषियों के दिव्य ज्ञान का प्रकाश है। ऋषियों ने जगत की उत्पत्ति, मनुष्य की चरम गति एवं कर्मकांड से संबंध अनेक विषयों पर मानव कल्याणार्थ अपनी विश्वासपूर्ण व्यवस्थाएं की हैं। वेदों का उद्घोष तमसो मा ज्योतिर्गम्य है। ख मानव आचरण के लिए सुव्यवस्थित नियम एवं आदेश का प्रतिपादन स्मृतियों एवं धर्मशास्त्रों में किया गया है। इन नियमों को यदि अपना कर्तव्य मानकर करें तो वही होगा उसका धर्म का पालन। श्रुति और स्मृति संबंध में मनुस्मृति में लिखा है कि श्रुति और स्मृति में जो कहा गया है वह धर्म कहलाता है और इन दोनों में कहे हुए कर्तव्यों आचरणों को जो करता हुआ अर्थात धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य इस लोक में यश को पाता है और मरकर परलोक में उत्तम सुख या मोक्ष को प्राप्त करता है। ग सत्पुरुष या धर्मात्मा लोगों का आचरण धर्म का अनन्य स्रोत है। वेदों को जानने वाले आदर्श पुरुष जो आचरण करते हैं वे साधारण व्यक्तियों के लिए प्रदर्शक होते हैं। महाभारत में जब महाराजा यक्ष ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से पूछा था कि धर्म क्या है, तो इसके उत्तर में उन्होंने यह उत्तर दिया कि महाजन, जिस मार्ग से गए हैं वही सच्चा धर्म है। घ धर्म का अंतिम स्रोत स्वयं व्यक्ति का अंतःकरण है। विशुद्ध अंतःकरण व्यक्ति को विशुद्ध पथ पर ही परिचालित करता है, अतः अंतःकरण का निर्देश ही हमारा यथार्थ मार्गदर्शक बन सकता है। हेडिंग, धर्म के रूप, जीवन के कर्तव्य कर्म धर्म के रूप में। धर्म के अनेक रूप हैं, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहला, वर्ण धर्म का तात्पर्य वर्ण द्वारा निर्धारित नियमों और कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। जैसे ब्राह्मण का धर्म वर्ण धर्म है अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ व बलि आदि का विधान करना, यज्ञ आदि को सुसंपन्न करना तथा दान लेना। दूसरा, आश्रम धर्म विभिन्न आश्रमवासियों के द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य आचरणों की ओर संकेत करता है। उदाहरणार्थ ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचारी का यह धर्म है कि ब्रह्मचारी सूर्योदय से पहले उठे, गायत्री मंत्र का जप करे तथा ईश्वर पूजा करे, सादा जीवन बिताए, गुरु की सेवा करे आदि। तीसरा, कुल धर्म व्यक्ति के अपने परिवार, वंश या कुल के प्रति उसके कर्तव्यों को करते हैं। उदाहरण, माता पिता की सेवा करना, सतीत्व का पालन करना, पितरों का पिंडदान करना आदि कुल धर्म है। चौथा, काल एवं देश धर्म उन कर्तव्यों के प्रति संकेत करता है जो कि एक व्यक्ति को समय समय पर अपने देश के लिए करना पड़ता है। आवश्यकता पड़ने पर देश की मर्यादा रक्षार्थ जीवन तक की बलि चढ़ा देना देश धर्म है। पांचवा, राजधर्म प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य कर्मों का परिचायक है। राजा का कर्तव्य है कि वह ऐसा कार्य करे जिससे कि जनता के सुख व समृद्धि की निरंतर वृद्धि होती जाए। छठवा, स्वधर्म अपने धर्म से संबंध आचरणों का बोध करवाता है। यदि एक व्यक्ति ब्राह्मण है तो उसका स्वधर्म ब्राह्मण धर्म है, अर्थात इस वर्ण से संबंध कर्तव्य कर्म है। सातवां, आप धर्म उन कर्तव्य धर्मों की ओर संकेत करता है जिन्होंने किसी व्यक्ति को आपत्ति के समय विवश करना पड़ता है, चाहे वह सामान्य धर्म के विपरीत ही क्यों न हो वह मान्य है। आप धर्म केवल आपत्ति काल के लिए होता है और उतने अंश में जितने अंश में आपत्ति है। मरणासन शाकाहारी रोगी को वैद्य ने लहसुन दे दिया तो अच्छे होने पर भी लहसुन उसका खाद्य नहीं हो सकता। इन सब धर्म के संबंध में हम अगले अध्यायों में विस्तार से विवेचना करते रहेंगे। हेडिंग, भारत में जीवन का धार्मिक आधार। भारतीय जीवन का मूल आधार धर्म ही है। धर्म को निकालकर भारतीय जीवन की कल्पना आज भी नहीं की जा सकती, क्योंकि भारत की 82% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और गाँव की जनता आज भी धर्म परायण है। भारतीय मान्यता यही है कि धर्म के बिना जीवन को बनाए रखना ही असंभव है। धर्म एक हुतो हंति धर्मो रक्षति रचितः, अर्थात धर्म का जो नाश करेगा धर्म उसका नाश कर देगा, पर धर्म की जो रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा भी करेगा। यह प्राचीनतम सिद्धांत भारतीय जीवन के प्रत्येक पक्ष में प्रत्यक्ष है। इसलिए उपदेश यही है कि धर्म के अनुसार चलो, परमेश्वर के सम्मुख नम्र रहो। यह दास्ता की कल्याणमय है, क्योंकि इसी दास्ता के माध्यम से तुम्हें अपने जीवन में परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। भारत में जीवन का धार्मिक आधार इसी से स्पष्ट है, फिर भी निम्नलिखित विवेचना से इस संबंध में और उपयोगी सिद्ध होगी। पहली हेडिंग है जगत जीवन का आरंभ और धर्म। जगत और जीवन का आधार भी धर्म है। भारतीय मान्यता के अनुसार इस विश्व और ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता केवल एक ईश्वर है। मनु जी की मान्यता है कि इस जगत की उत्पत्ति का मूल कारण परमात्मा है। उसके अनुसार सृष्टि के आरंभ होने से पूर्व जगत संपूर्ण भू अंधकारमय था। स्वयं परमात्मा इस स्थिति को सहन न कर सके और उन्होंने अपने पराक्रम से अंधकार को आलोक में बदला। इस प्रकार यह संपूर्ण जड़ तथा चेतन जगत उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा की अभिव्यक्ति है। मनु के अनुसार यह संसार मायामय तथा सारहीन नहीं, अपितु मानव जीवन के लिए धर्म तथा कार्य क्षेत्र है। इसी संसार में अपने धर्मानुसार आचरण के द्वारा ही व्यक्ति के परम लक्ष्य अर्थात परम सत्य की ओर बढ़ा जा सकता है। वेदांत सूत्र के अनुसार जीवन ब्रह्मा का ही अंश है। गीता में भी कहा गया है कि ममैव वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात आविर्भाव के पहले जीव ब्रह्मा के अंतर्गत रहता है, अतएव ब्रह्मा ही रहता है। फिर ब्रह्मा से पृथक होकर सत सहस्त्र जन्म जरा मरण के प्रवाह में असंख्य सुख दुख पाप पुण्य तथा धर्म ज्ञान से अभिज्ञानता प्राप्त कर जीव की जीवन यात्रा एक दिन समाप्त होती है और उस दिन फिर वह परम ब्रह्मा में आ मिलता है। इस प्रकार फिर आ मिलने की अवधि मनुष्य द्वारा किए गए धर्म कर्म पर निर्भर करती है। धर्म के अनुसार कर्म मनुष्य को जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति कर देता है और उसे ईश्वर से एकाकार होने में मदद करता है। इस प्रकार जीवन धर्म से ही आरंभ होता है और धर्म में ही उसका अंत होता है। भारत में जीवन का धार्मिक आधार इस बात से भी स्पष्ट है कि हिंदू जीवन दर्शन में मनुष्य के अंतरतम के सार को आत्मा कहा गया है। यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंग है। संपूर्ण जगत इस महान विश्व आत्मा ब्रह्मा से ही निकला है और उसी में फिर विलीन हो जाता है। जैसे नदियां समुद्र में से ही उत्पन्न होती हैं और बाद में उसी में लौटकर और उसी में मिलकर स्वयं समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार आत्मा का भी आदि और अंत दोनों ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा स्वयं परमात्मा का ही एक अभिन्न अंग है। जब उस परमात्मा ने एक से अनेक होने की इच्छा की तभी यह जगत तथा उसके असंख्य जीवों ने उनमें से जन्म लिया। अतः जो परमात्मा है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही तुम हो। इसलिए गीता के अनुसार यह आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा तो सदैव बनी रहती है, वह कभी नहीं मरती। अतः मृत्यु से क्या डर, डर तो एकमात्र भगवान से ही होना चाहिए। केवल हिंदुओं का जीवन ही नहीं, मुसलमानों का जीवन भी धर्म पर ही आधारित है और वह धर्म है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का अर्थ होता है समर्पण अथवा उत्सर्ग, जिसका मतलब होता अल्लाह ईश्वर की इच्छा के सामने झुकना। दूसरी हेडिंग है उत्सव पर्व व त्योहार एवं धर्म। उत्सव पर्व और त्योहार सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग है और इन पर भी हमें धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। हिंदू या मुसलमान अथवा सिख के प्रायः सभी धर्म उत्सव और त्योहार किसी न किसी रूप में धर्म से संबंधित है एवं उसमें धार्मिक कृत्यों को ढूंढना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। नवरात्र, गंगा दशहरा, नागपंचमी, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, तीज, करवा चौथ आदि हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्व हैं और इनमें से प्रत्येक में किसी न किसी देवी देवता को पूजने का विधान है। उसी प्रकार प्रमुख त्योहारों को लीजिए, होली में होलिका की पूजा, दीपावली में लक्ष्मी गणेश की पूजा, दशहरे में दुर्गा की पूजा, इन त्योहारों का प्रमुख अंग है। उसी प्रकार मुस्लिम त्योहारों में जैसे ईद, बकरीद आदि में नमाज पढ़ना आवश्यक है। सिखों के प्रत्येक त्यौहार पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ किया जाता है। ये हम लोग गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि भारतवासी उत्सव, पर्व व त्योहारों की खुशी में इतना ज़्यादा डूब नहीं जाते हैं कि अपने मालिक उस ईश्वर को ही भूल जाएं। हमारे लिए जीवन का सर्वोत्तम आनंद तभी सार्थक होता है जबकि वह परम आनंदमय, परम मंगलमय हमारे साथ रहता है। हम दुख में ही नहीं, सुख में भी उसे समान रूप से याद करते हैं। तीसरी हेडिंग है जीवन के कर्तव्य, कर्म तथा धर्म। भारतीय जीवन के जितने भी प्रमुख कर्तव्य हैं वे भी सब धर्म पर ही आधारित हैं। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार शास्त्र विहित कर्म ही धर्म है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, त्याग आदि सार्वभौम कर्तव्य कर्म है और इन सब का आधार धर्म ही है। जीवन के आधारभूत कर्तव्यों में यज्ञ का स्थान उल्लेखनीय है। वह जीवन निरर्थक है जो यज्ञ विहीन और यज्ञ का आधार धर्म ही है। महर्षि जैमिनी ने यज्ञ को धर्म स्वरूप माना। यज्ञ विहीन सदा चार ही वस्तुओं, सदा चार नहीं अधर्म ही है। यज्ञों के समुचित अनुष्ठान से उद्देश्यों की पूर्ति एवं स्वर्ग की प्राप्ति संभव होती है। वास्तव में धार्मिक आधार पर निश्चित प्रत्येक हिंदू के अपने जीवन में यह लोक और परलोक से संबंधित कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। इन नैतिक कर्तव्यों को मनु ने यज्ञ कहा है। मनुस्मृति के अनुसार ये यज्ञ पांच हैं: ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ तथा नृयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ को पठन पाठन या वेद्याध्ययन या वेद मंत्रों के उच्चारण द्वारा, पितृयज्ञ को पितरों के तर्पण या श्राद्ध द्वारा, देवयज्ञ को देवताओं को अग्नि आहुति, बलि या अन्य प्रकार के पदार्थ समर्पित करके, भूतयज्ञ को प्रेतमात्माओं को बलि तथा भोजन, जानवरे, कीड़े मकोड़े, अपाहिज मनुष्यों और असहाय व्यक्तियों को भोजन देकर, तथा नृयज्ञ को अतिथि स्वीकार सत्कार द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रकार हिंदू जीवन के समस्त कर्तव्य धर्म कर्म पर ही आधारित है। मुसलमानों में भी स्थिति बहुत कुछ यही है। कुरान के अनुसार सदाचार इसमें नहीं है कि तुम केवल नमाज पढ़ो, बल्कि सदाचार का अर्थ है अल्लाह, अंतिम दिन, देवदूत कुरान और पैगंबर में विश्वास। इन पर विश्वास रखते हुए जो लोग भी अल्लाह के प्रेम के लिए अपना धन अपने भाई बंधुओं, अनाथों, निर्धनों, यात्रियों तथा भिखारियों को व कैदियों को छुड़ाने के लिए देता है और जो प्रार्थना करते हैं तथा दान देते हैं और जो अपने अनुबंध या इकरार पूरा करते हैं और जो विपत्ति, कठिनाई तथा अशांति के समय धैर्यशील होते हैं और जो अल्लाह या कुरान के नियमों से डरते हैं, वे सब सदाचारी हैं। मुस्लिम मान्यता के अनुसार जीवन के उच्चतम आदर्शों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति कुरान के अनुसार जीवन व्यतीत करने से ही संभव हो सकती है। चौथी हेडिंग है जीवन पथ के संस्कार और धर्म। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक शुद्धि, सुधार या सफाई के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों को ही संस्कार कहते हैं। संस्कार के माध्यम से ही एक व्यक्ति समाज का पूर्ण विकसित सदस्य बन सकता है। पर जीवन पथ के ये सभी संस्कार किसी न किसी रूप में धर्म से संबंधित व धर्म पर आधारित होते हैं। वास्तव में धार्मिक आधार पर व्यक्ति के जीवन को परिशुद्ध तथा पवित्र बनाने के उद्देश्य से ही संस्कारों का जन्म हुआ है। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तथा संपूर्ण जीवन ही धर्म पर आधारित हो जाता है। दो एक उदाहरण द्वारा इसे प्रमाणित किया जाता है। जन्म के 10वें तथा 12वें दिन शुभ तिथि, नक्षत्र या मुहूर्त को देखकर बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता है। नाम प्रायः देवताओं, कुल देवता, ग्राम देवता आदि के आधार पर रख दिए जाते हैं। जब किसी दंपत्ति के बच्चे जीते नहीं हैं तो वे किसी विशेष देवी देवता की मिन्नत करते हैं और उन्हीं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रख लेते हैं। मानव जीवन का प्रथम परिचय नाम है और भारत में उस नाम पर भी धर्म की छाप देखने को मिलती है। यदि हिंदू अपने बच्चे का नाम रामप्रसाद या कालीचरण रखते हैं तो मुसलमानों के नाम भी अल्लाह रखा अथवा खुदा बख्श होता है। भारत में जीवन के धार्मिक आधार का इससे उत्तम प्रमाण और क्या हो सकता है। स्मरण रहे कि हिंदुओं के इस नामकरण संस्कार में पूजा, हवन आदि भी होता है और मुसलमानों के बच्चे के जन्म के 40वें दिन जो चिल्ला संस्कार किया जाता है उसमें भी नमाज पढ़ना और अल्लाह से दुआ मांगना इस संस्कार का आवश्यक अंग है। हिंदुओं में पंडित जी और मुसलमानों में मुल्ला जी बच्चे का नाम रखने आते हैं। इस प्रकार भारत में जीवन का आरंभ धर्म को साक्षी बनाकर ही होता है। पांचवी हेडिंग है शैक्षिक जीवन और धर्म। सफल जीवन के लिए शिक्षा एक आवश्यक शर्त है और भारत में बच्चे के जीवन में यह विद्या आरंभ के धार्मिक आधार पर ही होता है। हिंदुओं ने इसे पट्टी पूजन और मुसलमानों में बिस्मिल्लाह कहा जाता है। इन संस्कारों के नाम से ही स्पष्ट है कि शैक्षिक जीवन का भी इस देश में धार्मिक आधार होता है। हिंदुओं में इस संस्कार के अवसर पर विधिवत पट्टी को पूजा जाता है और फिर बच्चे का हाथ पकड़कर उसे पट्टी पर उसे ओम या अन्य कोई देवी देवता का नाम सर्वप्रथम लिखवाया जाता है। मुसलमानों में मुल्ला जी बच्चे से बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवाते हैं और पट्टी पर लिखना आरंभ करवाते हैं। पुराने जमाने में तो गुरुकुल में जाकर बच्चों के लिए धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन अनिवार्य था। आज भी ग्रामीण समुदाय में कुछ लोग लिखना पढ़ना इस उद्देश्य से सीखना चाहते हैं कि वे धार्मिक पुस्तकों जैसे रामायण महाभारत आदि को पढ़ सकें। छठवीं हेडिंग है पारिवारिक जीवन तथा धर्म। भारत में व्यक्ति का पारिवारिक जीवन भी धर्म पर आधारित है। परिवार बसाने के लिए अर्थात पारिवारिक जीवन में प्रवेश पाने के लिए विवाह अनिवार्य है और हिंदुओं में तो विवाह स्वयं ही एक धार्मिक संस्कार है। इनमें देवता को साक्षी मानकर कन्या का दान किया और लिया जाता है, अग्नि देवता का हवन किया जाता है और अन्य अनेक धार्मिक क्रियाकलापों को करना होता है। मुसलमानों में विवाह एक शिष्ट सामाजिक समझौता है, फिर भी निकाह के समय मुल्ला या कांजी जी की उपस्थिति कुछ न कुछ धार्मिक आधार की ओर संकेत करती ही है। हिंदुओं में यह आधार बहुत ही ठोस होता है। यह बात इसी से स्पष्ट होती है कि हिंदुओं में पत्नी को धर्म पत्नी व पति को पति देवता कहा जाता है। देवी भागवत में कहा गया है कि स्वेच्छामय भगवान स्वेच्छा से दो रूप हो गए, वाम भाग के अंग में स्त्री और दक्षिण भाग के अंग से पुरुष बने। इन दोनों के सहयोग के बिना सृष्टि का कोई काम संपन्न नहीं होता। विवाह उसी धार्मिक कार्य की अभिव्यक्ति है। विवाह का प्रथम उद्देश्य धार्मिक कर्तव्यों का पालन है। इन धार्मिक कर्तव्यों को ही यज्ञ कहा गया है और पत्नीहीन पुरुष यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य पुत्र प्राप्ति है। महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो पुरुष संतान उत्पन्न नहीं करता वह अधार्मिक होता है। संतान को जन्म देना बड़ा धर्म है। इसकी तुलना में अग्निहोत्र तीनों वेद बिल्कुल नगण्य हैं। संतान ही तीनों वेद हैं और सदा बने रहने वाले देवता हैं। दुष्टर संसार सागर को पुत्र की नौका से पार किया जा सकता है। स्वर्ग में बने रहने के लिए तथा नरक से बचने के लिए पुत्र आवश्यक है। पुत्र प्राप्ति ऋण है और इसे न चुकाने पर पुत्र के अभाव में पिता पुत्र नामक नरक में जाता है और उसे पितर पिंडदान के अभाव में भूखे प्यासे मरते हैं। व्यास स्मृति में गृहस्थ का पारिवारिक जीवन को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सच्चे दिल से गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले को घर में ही कुरुक्षेत्र हरिद्वार तथा केदार तीर्थ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन के धार्मिक आधार को दर्शाने के लिए इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है। सातवीं हेडिंग है आर्थिक जीवन और धर्म। भारत में आर्थिक जीवन का भी धार्मिक आधार है। हिंदुओं में लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि धन या निर्धन होना पूर्णतया इसी देवी माँ की कृपा पर निर्भर करता है। नगरों तक में व्यापारी दुकानदार आदि व्यवसाय को आरंभ करने से के दिन पूजा पाठ हवन कीर्तन आदि करवाते हैं। प्रतिवर्ष दिवाली की शाम को दुकान में लक्ष्मी पूजन तथा कारखाने एवं अन्य अवसर पर श्रमिकगण विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। दशहरा या अन्य किसी अवसर पर हर साल नया बही खाता आरंभ करने से पूर्व उसकी पूजा की जाती है। शिल्पकार वर्ग अपने औजारों की पूजा तथा भारतीय किसान अपने हल बैल व खेत की पूजा नियमित रूप से आज भी करते हैं। इन सबसे स्पष्ट है कि हमारे आर्थिक जीवन पर धर्म का वास्तव में अत्यधिक प्रभाव है। इतना ही नहीं, धर्म के पालन के अर्थ में महत्व को स्वीकार किया गया है। महाभारत में लिखा हुआ है कि धर्म का पूर्ण रूप से पालन काफी सीमा तक अर्थ पर निर्भर है। जिसके जीवन में अर्थ का साधन नहीं है वह अपने धार्मिक कर्तव्यों अर्थात पंच महायज्ञों ब्रह्मायज्ञ पितृयज्ञ देवयज्ञ भूतयज्ञ तथा निर्यज्ञ का उचित ढंग से पालन नहीं कर सकता है। इसलिए निर्धनता को एक ईश्वरीय अभिशाप माना जाता है। उसी प्रकार धर्म विरुद्ध तरीकों से धन कमाने को भी पाप माना गया है। इसीलिए घूस लेना पाप है और ऐसे लोग ईश्वरीय दंड के भागीदार होते हैं। इस्लाम धर्म में घूस लेने और सूद कमाने को बुरा बताकर उसकी स्वीकृति नहीं देता है। आठवीं हेडिंग है राजनीतिक जीवन और धर्म। प्राचीन भारत में राजनीतिक जीवन का भी एक धार्मिक आधार होता था। प्रत्येक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित या राजगुरु होता था जिसकी आज्ञा का पालन राजा स्वयं करता था। शासन कार्यों में भी राजा अपने राजगुरु से परामर्श करता था। परंपरागत रूप से राजनीतिक जीवन के धार्मिक आधार का एक और प्रमाण राजधर्म की अवधारणा में देखने को मिलता है। राजधर्म राजा के कर्तव्यों को बताता है। विष्णु स्मृति के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा पालन अर्थात प्रजा के अधिकाधिक सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रयत्नशील रहना, दुष्टजनों को दंड देना तथा धर्म की रक्षा करना है। आधुनिक समय में राजनीतिक जीवन का धार्मिक आधार बहुत कुछ दुर्बल हो गया है, पर भी फिर भी आज भी प्रजातंत्रात्मक राज्य तक में जनता के प्रतिनिधि, संसद तथा विधानसभा के सदस्य ईश्वर के नाम पर ही अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ लेते हैं और राजनीतिक नारों में मानव धर्म के प्रति अपने निष्ठा को व्यक्त करते हैं। हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम लीग आदि कुछ राजनीतिक पार्टियों का मूल आधार धर्म ही है। कहा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पाकिस्तान की मांग को इस्लाम खतरे में है, यह नारा लगाकर ही प्रभावशाली बनाया गया था। आज भी अनेक राष्ट्रीय नेता राजनीतिक कार्यों के मामले में दिन, तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों को मानते हैं और अपने भविष्य भाग्य के बारे में ज्योतिषियों से परामर्श करते हैं। इन सब बातों से राजनीतिक जीवन का धार्मिक आधार और भी स्पष्ट हो जाता है। नौवीं हेडिंग है जीवन का अंत और धर्म। भारत में केवल जीवित अवस्था में ही जीवन धर्म पर आधारित नहीं है, अपितु जीवन का अंत हो जाने अर्थात मृत्यु हो जाने पर भी जीवन धर्म पर आधारित है। व्यक्ति के मर जाने पर जो अंतिम संस्कार किया जाता है वह भी धर्म पर ही आधारित होता है। हिंदुओं में मर रहे व्यक्ति को भगवान का नाम लेने को कहा जाता है अथवा भगवान का नाम कहकर या रामायण आदि धर्म ग्रंथ को पढ़कर सुनाया जाता है। उसके मुँह में गंगा जल दिया जाता है। उसके शव को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान घाट तक ले जाया जाता है। उसकी देह की अस्थियों या जली हुई राख को गंगा अथवा अन्य किसी पवित्र नदी में बहा दिया जाता है। 13वीं के दिन हवन आदि का किया जाता है। मुसलमानों में भी जनाजा पढ़ना, फातिमा पढ़ना आदि मृतक संस्कार के आवश्यक अंग हैं। इससे भी धार्मिक आधार का पता चलता है। गीता के अनुसार जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को ग्रहण कर लेती है। मृत्यु के बाद जीव को उसी समय दूसरी देह मिल जाती है, पर वह स्थूल देह नहीं होती। वह तेज प्रधान या वायु प्रधान अतिवाहिक देह होती है, जिसको ग्रहण करके जीव अपने पाप और पुण्य के अनुसार विविध पितृलोक अथवा देवलोक के विभिन्न स्तरों में पहुँचता है और वहाँ दुख सुख का भोग करके पुनः नियति के विधान के यथा योग्य स्थूल देह को प्राप्त होता है। अंत में यह जीवन मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है और आत्मा का परमात्मा के साथ महामिलन घटित होता है। ईश्वर की देन यह जीवन अंत में ईश्वर में ही विलीन हो जाता है। उसी प्रकार इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार अल्लाह की इच्छा का पालन करने का पुरस्कार मुसलमानों को परम आनंद के रूप में प्राप्त होता है। वे लोग जो उनके संदेश में विश्वास नहीं करते और उनकी इच्छा को भुला देते हैं दंड के भागीदार बनते हैं। जीवन के अंतिम दिन मनुष्य के कर्मों का न्याय होता है। कोई नहीं जानता कि वह दिन कब आएगा, पर जब आता है तो सभी को अल्लाह के सामने हाजिर होना पड़ता है। सब उसके कर्मों का न्याय होता है और अपराधी को दंड दिया जाता है, जबकि धर्मशील लोग अत्यंत आनंद भोगते हैं। इस प्रकार आपका धर्म नामक अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।